یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 519.
آپ کا یہ جناب سنا دیکھا، بہت اچھی ہے، مومن ہے، بل آپ کے اوپر ہمیں شرازی ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. چندن چنا سگند بہو اپار پاس سگند نہیں لگا رجی تیرا تمہیں ستیلوں کٹو بابا بے ایمانی گرگت گنگا مائی ابھرئی سیدھا کر سب پرکاشی جی مارا ناگر امام سے سلوا کرو اللہ کرے چندن پاتے ہی ملتے انڈیا کے اندر چندن کے بہت سے جنگل ہیں، افریقہ میں بھی ہے لیکن یہاں ہندوستان میں چندن بہت ہوتا ہے، تو جنگل بھی کہتے ہیں چندن بھی. اس لکڑی کو جلاؤ اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، پانی میں گھس کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ اپنے پریشانی کے اوپر اس کا لیپ لگاتے ہیں، تلک لگاتے ہیں. چندن ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو سورج کی روشنی سے گرمی کے کارن سے جو پھر دکھتا ہوگا اس کو انگلش میں کہتے ہیں سنسٹروک. تو چندن گھر سے پانی سے سر سے لگانے سے آدمی کا سر درد بند ہو جاتا ہے، بدن کے اوپر چندن کے ملنے سے چمڑی اچھی ہوتی ہے، اور مذہبی جگہ کے اوپر چندن کو جلا کے خوشبو پھیلاتے ہیں. ہمارے شہر نے ایک چھوٹی سی دعا بنائی تھی جب ہم گھٹپاٹ کی کریا کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جب حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز ہوتا ہے اس لیے بات کریا یا اور دعائی پڑھنے کی ضرورت نہیں. مولانا امام سلطان محمد شہزادار نے یہ بند کروا دیا کہ ٹائم تمہارا بچ جائے، کیونکہ پرانی جو دعا تھی اس میں بارش پاس ہے گھٹپاٹ کی دعا کے ہم دھوتے وقت دعا پڑی جاتی تھی، شام ہونے کے بعد پھر دھوپ لگایا جاتا تھا، دھوپ لوگ آنتے ہوئے اگر چندن میں واسنا پہ واسنا سہتی سروے دیوتا لے کرے پہ واسنا پیر پیغمبر بھوگ رہے پہ واسنا سورگ کیرتن کرے پہ واسنا گھٹپاٹ میں تھام پوتر کرے حق سچا ہے یوجنا قائم پایا ساتھی. یہ ہماری دعا تھی گھٹپاٹ کے کام کو دھوپ دینے کے لیے، دھوپ لوبان اگر اور چندن یہ چار چیزیں پیر میں گنا میں دعاؤں میں فرمائی ہے. دھوپ بہت اچھی چیز ہے، और जमात खानों के अंदर धूप लोबान करना चाहिए। 1400 वर्ष पहले रसूल अकरम ने यह फरमाया है कि मस्जिदों के अंदर अगर जलाया करो। नबी करीम से पहले ईसा नबी के जमाने के अंदर भी उस जमाने के अंदर जो मजहबी जमात खाने के मस्जिदों थे उसके अंदर भी लोबान जलाया जाता था। बाइबल के अंदर लोबान का बहुत अच्छा जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर भी जमात खाने में लोबान जलाने की इबादत आती है। बाइबल के अंदर उसका नाम है लबोने LBOND LLE। वो जो है ना रूप लोबान अगर चंदन इसके अंदर जिनानों में जो नूरानी या बातनी मतलब निकलता है वो इंसान के अंदर की नेतियां हैं। तो जिस तरह से धूप लोबान से खुशबू मिलती है सारा वातावरण खुशबूदार बनता है, ऐसा एक मोमन है उसके अंदर पाक है इबादत करता है। जहां मोमन बैठा होगा उसका इर्द-गिर्द का जो वातावरण है नूरानी हो जाता है। मोमन जहां भी बैठता है नेकी और अच्छाई की बातें करता है, बदगोई नहीं करता, खराब गोली बातें नहीं करता, अच्छी नेक बातें करता है तो सारा वातावरण जो है सुरील होता है। मोमन के पास बैठने से बड़े फायदे होते हैं। मोमन के पास बैठने से इंसान का दिल पाक होता है। अपने का कहना यह है कि दिशा में चंदन के झाड़ के पास ही एक नींबू का झाड़ था। बाजू बाजू में होने की वजह से ये जो नींबड़ा था इसकी लकड़ी में पास आ गई, खुशबू आ गई, क्योंकि उसका अलौकिक था। नींबड़ा कड़वा है लेकिन इसकी लकड़ी बड़ी सॉफ्ट है और नींबड़े की लकड़ी के अंदर जानते नहीं होती। भले कड़वा है लेकिन चंदन की खुशबू इसमें आ गई। फिर तीन पेटियों के इसके पड़ोस में एक और जहाज था, वाह इसमें जो बैठू ट्री कहते हैं बांस मीठा है, चंदन कड़वा है, लेकिन चंदन अंदर से गांठ बिगड़ता है, सॉलिड है, और जो वांस है वो अंदर से तोला है और उसके खुद के ऊपर गांठें होती हैं, जैसे कि हम चंदनी और गंदा इस तरह से इसकी भी गांठें होती हैं। भले है मीठा लेकिन अंदर खानी है, इसमें चंदन की वास नहीं आई। इसको ये पुरस्कार दिया है, दाखिला दिया है कि गुरु मुर्शिद के पास बैठने से तो आला दर्जे के रूहानी आदमी की संगत में बैठने से अगर इंसान के अंदर डांस नहीं है, यहां डांस का मतलब सीना रखना, हसद करना, बुरे ख्याल विचार जो है वो इंसान के मन को तोला कर देते हैं। जीभ से बड़ा मीठा होता है, जैसे कि वास जो है वो मीठा है। आपके चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओ तो वहां एक डिश होती है बैंबू सूप, ये बैंबू सूप की जो डिश है मिलती है बैंबू के बिल्कुल ऊपर कौन कौन जो पत्ते निकलते हैं वो बैंबू सूप से सब्जी भी खाओ तो भी बड़ी मीठी होती है। लेकिन चंदन के झाड़ के साथ रहने पर भी हालांकि जाहिर में मीठा है लेकिन अंदर उसका तोला है, डांस वाला है, इसमें चंदन की बात नहीं आती। और वो जो निमड़ा है कड़वा है लेकिन अंदर पाक है, क्लीन है, उसमें से बात आ जाती। मौलाना हजर इमाम आता है उसके आजू बाजू में बहुत से ऑफिसर होते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, जो लोग इबादत करने वाले हैं लोग हैं दसवंदी हैं उनको मौलाना हजर इमाम की सेवा में रहने से नूर की बख्शिश मिलती है। लेकिन वो जो आदमी जिनके दिल में ईमान नहीं, जिसके दिल के अंदर हजर इमाम करके प्रेम नहीं, वो हजर इमाम के पास रहने पर भी ईमानदार नहीं बनते। 1925 में हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब अफ्रीका आए। अफ्रीका मौला आए जुलाई का महीना था। जुलाई का महीना अफ्रीका में विंटर सीजन है, ठंडा होता है, क्योंकि जो अफ्रीका साउथ ऑफ इक्वेटर है वहां क्लाइमेट ऑटोजिश होती है। जो नॉर्थ में रहते हैं अगर ऊपर, जैसे कि अभी ये इंडिया है और जनवरी का महीना है, इंडिया में वेदर इस वक्त कूल है, विंटर है, लेकिन अगर हम इक्वेटर पास करके नीचे चले जाएं वहां गर्मी होगी। यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है नीचे गर्मी होती है, यदि ऊपर गर्मी होती है नीचे ठंडी होती है। मौला को सर्दी लग गई, ठीक है, हमारे नाक में से पानी निकले, लेकिन मौला को जाना था यूरोप वापस। फ्रेंच स्टीमर में दे ब्रेक सुबह 5 बजे साफ करे। जहाज का एक ऑफिसर मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब के साथ गया। साहब ने कहा कि मुझे मुंबासा तक छोड़ा। सूरज निकला, स्टीमर का कैप्टन साहब के केबिन में गया, रिक्वेस्ट की कि योर हाइनेस टेबल तैयार है, आप आओ नाश्ता करें। बोला नाश्ते के टेबल पर बैठे, ये अपना ऑफिसर साथ था। सबसे पहले वो ग्रेप फ्रूट लाया, फ्रूट भी था जूस भी था, तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब गला से खा के पीने लगे। तो ये आदमी मौला को कहते, खुदा ने आपको सर्दी हुई है, आपके लिए अच्छा नहीं। सब ने गला रख दिया, नहीं किया। थोड़ी देर के बाद तोरी जाई, साहब उसको देखा तो उसने कहा सब तोरी भी अच्छी नहीं, कितनी है। सब ने तोरी छोड़ दी। फिर उसके बाद जब एग्स आए तो उसने कहा हाँ आप ये खाओ, तो मौला ने खाओ। अब हुआ ये कि ये आदमी मौला को कहे कि ये खाओ तो मौला खावे, ये कहे ये ना खाओ तो मौला ना खावे। वो भूल गया इस बात को कि दो जहान का बादशाह है, तू इसको क्या सिखाने जाएगा। लेकिन मौला भी देखो ऐसा बच्चे की तरह हो गया, कुछ भी साहब को खाना पीना हो तो उसको पूछे। 10:30-11 बजे का टाइम हुआ, सब डेस्क के ऊपर बैठे थे और वो बहरा निकला आइसक्रीम की ट्रे लेके। अभी सुल्तान मोहम्मद साहब को आइसक्रीम बहुत प्यारी, और इधर उधर उस ऑफिसर को ढूंढने लगे। आखिर उसके उसको बुलाने गए, उसको कहते मैं आइसक्रीम खाऊं, तो साहब आइसक्रीम आपके लिए अच्छी नहीं, ठंडी है। बहरे को बोला चले जाओ आइसक्रीम छोड़ दी। देखो जान जान अजान भय के तारत, जानबूझ के अजान हो गया। सद सभा सुख सारी, मगर मोमिनों की संगत में मौला सुख देने वाला है। जान अजान भय के तारत मुंबासा आया। तो कहते साहब मैं अभी जाऊं जल्दी बार वापस, जल्दी क्या है, मुझे कोर्ट सही तक छोड़ दिया, तेरे होने से मुझे पता लगता है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। इसको तो बहुत फखर आया। दो दिन मुंबासा करे, स्टीमर गई कोर्ट सही तक, मौला को छोड़ाया, मौला जी स्टीमर चली गई फ्रांस और ये दूसरी स्टीमर में घर वापस आया। और जब इस बात निकले, अरे तुम इसको बोलते हो कि ये इमाम है, सब कुछ जानता है, सर्दी हुई उसको ये भी पता नहीं कि ग्रेप फ्रूट का जूस पीता, ऐसी बातें करे तो थोड़ा सा ईमान था बिल्कुल मिट गया। मौला की शनाखत मौला के पास रहने वालों को भी नहीं होती। अगर दिल में ईमान न हो गए तो हम हजरत ईमान की शनाखत नहीं कर सकते। और मौला हमेशा हमारे साथ हमारे ईमान को देख के सलूख करता है। अगर हमारा ईमान ढसू पच्चू है तो मौला एक इंसान बन जाता है। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हमारे साथ मौला اس الہی ذات کا بن جاتا ہے. جیسا ہمارا سبند اپنے مولا کے ساتھ ہو رہے ایسا مولا کا ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک لڑکا 12-14 سال یورپ میں رہا, بہت اچھی بڑی فیملی کا لڑکا, بمبئی والا, انڈیا جب واپس آیا اب لائیے کہ اس چھوٹی عمر میں باپ گزر گیا تو بڑے بھائی نے سارا باپ کا بزنس سنبھالا اور خود کی پڑھائی اس نے بند کر دی, سیکریفائز کیا, مگر چھوٹے بھائی کو پڑھایا, خرچہ وغیرہ دیا. یہ چھوٹا بھی نکل کے واپس آیا تو اس کی ماں, ان کا بھائی اگر امام کو خدا کا دور کے طور پہ سمجھے اور ان کی ڈسکشن ہو رہے تو یہ کیا بولے بتا, ارے میں نے مولا کو ادھر دیکھا, سب ریس کے میدان میں تھے, گھوڑے دوڑتے تھے, ریس پہ سب جاتا ہے, بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتا ہے, جہاں ڈانس کلب میں ہوتی ہے سب ادھر جاتا ہے, اور تم بولتے ہو کہ یہ ہمارا دھارمک گرو ہے. ماں تو بالکل کھلا کہہ دے رہے تھے یہ ہمارا خدا ہے. تھوڑا مہینے کے پیچھے مولا آئے, ان کے کٹن کی مہمانی تھی, یہ لگ رہا تھا صاحب کو ملتا بھی تھا ادھر, سب پوچھا کبھی آئے, بولا تھا ایک ایک برس ہوا, ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوئی, دھارمک باتیں ہوئی, تو یہ کہتے خدا بند جو رہا ہے صاحب تو آپ کی منتھ سب بولے کیا ہے, تو یہ مولا کا پوچھتا ہے کہ خدا بند یہ میرا بھائی ہے نا, یہ کہتا ہے آپ خدا ہو, تو مولا ہنسے ایسا تم کیا بول رہے ہیں, کہتا ہے سوچ کے آپ میرے گرو ہو, مرشد ہو, بابا فرمایا برابر ہے. تو بڑا جو بھائی تھا وہ کہتا ہے خدا بند یہ کچھ بھی کہے میں تو آپ کو اپنا مالک مانتا ہوں, سا فرمایا برابر ہے. تو یہ سب کو کہتے ہیں یہ بھی برابر ہے میں بھی برابر, بابا فرمایا تو اس کی ماں کی طرف انگلی سی کیا, سب وہ کہتے یہ کون ہے, تو میری ماں ہے, اور یہ کون ہے, میرا بھائی ہے, بہن بیٹی کی تو سب یہ کون ہے, سب میری بہن ہے, اور یہ کون ہے, سرکار یہ میری وائف ہے. تو کیوں تو ایک ہے, ماں کا بیٹا, بھائی کا بھائی, بہن کا بھائی, وائف کا, تو وائف کا بھائی بھی نہیں, بیٹا بھی نہیں, ہسبینڈ ہو تو ایک ہے, لیکن سب کے ساتھ تیرا ایک جیسا سمبندھ نہیں, تو اپنے بھائی کا, بہن کا بھائی ہے لیکن ماں کا بیٹا ہے, وائف کا ہسبینڈ ہے, تو تیرا جدا جدا سمبندھ ہے نا. لیکن میں بھی ایسا ہی ہوں, تیری نظر میں گرو یا مرشد ہوں برابر, کوئی مجھ کو امام مانتا ہے برابر ہے, کوئی مجھے پیر مانتا ہے برابر ہے, ورنہ اگر کوئی مجھ کو خدا مانتا ہے تو میں اس کے لیے خدا ہوں. جیسے تمہارا سبل, ایک آدمی پتھر لے کے کاٹ کاٹ کے اس کی مورتی بناتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے بھگوان میری آشا پوری کر, ارے بھائی اس کو تو تم نے بنایا ہے, بھگوان کیسے ہو گیا. لیکن یہ چیز من کے اعتقاد کی ہے, جیسا ایمان اس شخص نے مورتی بنائی مگر اپنے خیال سے کہ میں اس کی مورتی بناؤں تو میں اس کو پوچھ سکوں, ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے لیکن وہ ہندو مانتا ہے, اور اگر وہ سچمچ سچے دل سے اپنی کو مراد مانگتا ہے تو وہ پتھر کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں ہوتی, اس کے اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے, پتھر میں تو کچھ نہیں. لیکن اس آدمی کے دل میں مورتی کے لیے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کی وجہ سے اس کی دعائیں پھلتی ہیں. ایسا ہی اگر حضرت امام کو ہم سچا مالک مانتے ہیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے. ہماری جماعت میں ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ وہ جماعت خانے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور کئیوں کو بدلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں, वो अगर मर भी जाएंगे तो हम ही दफन करेंगे उनको, उनके दिल के अंदर हजूर मंत्र की कोई ईमान नहीं। चलो ना सही, मना इससे छोटा नहीं होगा बड़ा नहीं होगा, हमारे मानने न मानने से मौला को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हजर ईमान के साथ जैसा एतकाद ईमान रखे ऐसा मौला हमारे साथ करता है। कई लोग जानते हैं कि मौला तो सब खबर है और वो कभी भी मौला के पास जहर भरे कोई अरज नहीं करते, कभी मौला पूछता भी है तो वो कहते खुदावंद तेरे को सब पता है, फिर मौला इंसिस्ट नहीं करते। ऐसे भी हैं तो वो मौला को मौला जरूर कहते हैं लेकिन उनका ये ईमान धसी पक्की है कि मौला सब कुछ जानता है। बॉम्बे में वाल्केश्वरी आसंद भाई थे, मैं 50 बरस की बात करता हूँ, मैं खुद उसका मेंबर था, हम लोग महीने के 8 आने दिया करते थे, 300-350 मेंबर थे, वो सब रुपए इकट्ठे होते थे और जब भी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रिंस नामदार आवे, वीरानी से अमेरिका कोई भी आवे तो हर गुरुवार को खर्च दे को और संडे को फ्रूट लेके हम वाल्केश्वर के बंगले जाए और इस नूरानी समिति को फ्रूट हमारी तरफ से मिले, सुल्तान मोहम्मद शाह की आमदनी हुई। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हमेशा नवंबर दिसंबर जनवरी में आवे, अब ये जो महीने हैं इन महीनों के अंदर हाफिज आम नहीं मिले और सुल्तान मोहम्मद शाह को हाफिज आम बहुत पसंद। हमारे मुखी रसीद अली थे, मैजी मुखी के बाद क्राफर्ड मार्केट में इनकी दुकान थी, जब ये हाफिज आम का सीजन आवे तो मुखी बहुत बड़ा यानी 1500 आम ले लो, आधे कच्चे आधे पके, और उसको मील गर्म करके धागे से बांध के ऐसा मील में जगह दे रहे, बाहर निकाले तो मील है वो सारे आम को कवर कर डाले और फिर रख दे रहे। ये आम 6-12 महीने तक पड़े रहे उसी तरह से सड़े नहीं, तो रजवी मुखी हमेशा बहुत से आम इस तरह से लेके अच्छी क्वालिटी के उसको प्रिजर्व कर डाले, जब मौला की पदराम नहीं हो तो थोड़े थोड़े इसमें से आम निकाल के उसके पकाने का तरीका उसको पकाए। वाल्केश्वरिया के संजय भाई हमेशा उससे फ्रूट ले रहे, एक दिन गए फ्रूट लेके संजय का दिन 10-15 आदमियों ने फ्रूट के खाने उठाए, वाल्केश्वर के बंगले पे बाहर खड़े हैं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद का जाता नहा के सब बाहर निकले, बालों में से पानी का पत्ता था, बाहर आए बहुत खाना वालान फरमाई, बिहार कुछ आम देखा तो सब नजदीक आए, एक आम उठाया माँ बाप ने नाच के पास उसको सूंघना शुरू किया। अब वो आदमी जिसने ये ट्रे उठाई थी उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, अगर इमाम के साथ में बात करूँ, जब साहब ने आम उठाया तो कहते खुदावन ये जरा कच्चा है, ऐसा मौला के सामने जब ये होशियार बनेंगे तो मौला एकदम बुद्धू बन जाता है, ऐसा हाँ सर तुमको पकाना आता है, हाँ सर 1-2-3-24 आम थे साथ में हिसाब किया, देखो ये आम घर ले जाओ और इसको पका के नेक्स्ट टाइम लेके आना, जो आप इसने के हिसाब चले गए। हमारे साथ कैप्टन लखपति थे, कैप्टन लखपति ने उसका उजरा लिया, अरे बेवकूफ मूर्ख कि किसको सिखाने जाता है कि साहब ये कच्चे हैं इसको पकाना चाहिए घास में रखना चाहिए, उसको पता नहीं, हाँ अभी तू ले आदमी आम घर ले गया घास वगैरह के अंदर रखे और रोज इसको देखे, अभी 4 दिन के बाद थर्स डे को ये आम तैयार होने चाहिए, सोचा कि सब 2-3 दिन लगे, दिन भर सारे आम सड़ गए, अब तो ये घबराया गया बड़ी मुखी के पास पाँव पकड़े, मुखी साहब मुझे बचा लो क्या है, तो इसके सारे ग्रहण सुनाई मुखी कहते हैं अरे बेवकूफ तो किसके सामने बोलता है मेरी सुनो, खैर इसको वो किसी को आम नहीं ले रहे हजर मत तो वास्ते रखते होते हैं, इसे अच्छे पके हुए आम निकाले, मेरा बाहर आए। वो तुम आम लाया? हाँ लाया। साहब जब नजदीक आए तो देख के कहा, देखो ये वो आम नहीं है जो तुम ले गया था। फिर तो उसकी दावत मेरी भूल हो गई, वो आम सड़ गए। तुम तो कहते थे तुम उसको पकाना जानते हो। साहब मेरी बहुत खुश हो गया। तुम्हारी के हुजूर में कभी भी अपने आपकी होशियारी जाहिर नहीं करना। ये तो मौला है और दीन और दुनिया को जानता है, इसने पैदा किया है सब कुछ। ये नूर है, हम मौला के बदन की तरफ इज्जत को देखते हैं। मौला का जो शरीर है वो सारी दुनिया की सब चीजों से साफ और पवित्र है, लेकिन उसका शरीर कपड़े है। ये कपड़े उतार के वो नए कपड़े पहनता है, नूर होती है। और हम नूर को मानते हैं, हजर इमाम के बदन की पूजा नहीं करते। मौला के शरीर की हम इज्जत प्रेम करते हैं क्योंकि उसके शरीर में नूर है, लेकिन असल हमारा इस्माइली मजहब जो है वह हजर इमाम की मारिफत है, यानी हजर इमाम की नूरानी का नाकत है। चंदन पास से रूम से सुगंध बन अपार, तेमू पास से तोला मसला सुगंध नहीं लगा। हमारा अंतर जैसा है ऐसा हमको फल मिलता है, हमारा अंतर। अगर हमारे दिल के अंदर, अगर हमारे बातों में, हमारे घर में हजर इमाम की मोहब्बत है, हजर इमाम की शनाखत है, तो दिन भरो मौला हमारे पास है। लेकिन हमने अगर मौला को मौला नहीं समझा, एक ऑर्डिनरी दुनिया के आदमी के तौर पर ले लिया, तो फिर जैसा हमारा संबंध होगा मौला हमारे साथ ऐसा सलूक करेगा। आप उसको मानो कि वो मेरा माँ और बाप है तो सच कुछ वो माँ बाप है। आप उसको मानो कि मेरा शेख है तो वो आपके साथ शेख का सलूक करेगा। आप उसको पीर मानो तो पीर जैसा, इमाम मानो तो इमाम जैसा। और अगर आप उसकी मारिफत जानते हो कि हजर इमाम अपनी नूरानी हालत के अंदर खुदावत आलमीन का नूर है, तो दीनदारों में सच बात है। एक आम आदमी इबादत करे, नेकी करे, अच्छी तरह से, जैसे एक मुर्शिद ने कहा इस तरह रहे तो मरने के बाद उसका जो रूह है वो खुदा के नूर में चले जाता है, यानी वो खुदा बन गया। नबी और इमाम जो होते हैं वो जन्म से ही नबी और इमाम होते हैं, भले वो जाहिर नहीं करते जब तक के टाइम नहीं आता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी उम्र की 40 बरस में नबूवत जाहिर की, लेकिन नबी तो वो जन्म से थे। ये इमाम और नबियों के अंदर जो नूर है वो खुदा की जात है, और ये लोग खुदा के साथ एक ही होते हैं। हमें कुछ शनाखत करनी चाहिए कि ये दीन दुनिया का जो बादशाह है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे नहीं, हालांकि घूमता फिरता है इंसान के तौर पे। थोड़े दिन पहले मैंने मौलाना अली का माँ बाप की एक स्टोरी सुनाई थी, तो जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें सुनाई। अली का माँ बाप ये जो वाड़ी है आगा हॉल, यहाँ रहते थे अपने अली का माँ बाप ने, अली का माँ बाप ने, सुल्तान मोहम्मद का माँ बाप ने यहाँ अपनी जिंदगी गुजारी। इसको थोड़ी वॉल्यूम कम करो। माता सलामत भी यहाँ रहा करते थे। अली का माँ बाप जब 3 जुम्मे में थे तो अपने बंगले से नीचे उतरे। आपको पता है इधर एक हौज है, इसमें बीच में फवारा था, फाउंटेन, इसमें पानी होता था। ये हाउस अली शामा बाप ने बनवाया, और रात को 2 बजे अली शामा बाप नीचे उतरे अपने बेडरूम में से, और इसके अंदर पानी के अंदर कमर तक पानी होता था। अली शामा बाप इस पानी में खड़े रह रहे सुबह 5 बजे तक, 3 घंटे पानी में खड़ा रह रहे। इस कारण से कुछ वर्षों के बाद अली शामा बाप के पांव दुखते थे, क्योंकि 3 घंटे हर रोज पानी में रहते थे और 3 घंटे इसके लिए इबादत करते थे। 30 तो इबादत लाजिम है, तो फिर अली शमा बाप 3 घंटे हर रोज सुबह इबादत करें, फिर ऊपर जा रहे 5 बजे के बाद कपड़े बदल के मौला 6 बजे के करीब वापस आवे, जमात दुआ वगैरह पढ़ के न्याज पी के ये हौज के सामने जमीन पर बैठ जावे। अली शमा बाप आवे और हौज की वो जो दीवार है उसके ऊपर बैठ जाए और जमात को दीदार दे रहे, जमात को मौला फरमान भी करे। उस जमाने के बहुत से ऐसे फरमान हैं कि जो लिखे भी नहीं गए लेकिन बुजुर्गों से वो चले आते हैं। मैंने ऐसे बहुत से फरमान लिख लिए जो मेरे दादा ने सुनाए भी थे और उन्होंने लिखे भी थे। एक दिन अली शमा बाप फरमाते हैं, हे जमात, एक बादशाह था। एक स्टोरी सुनाते हैं, एक बादशाह था और उसकी जो रैयत प्रजा थी उसको बहुत चाहती थी। हर आदमी खुशहाल और सुखी था, कोई तरह की बीमारी नहीं थी, कोई तरह का दुख भरा नहीं था, प्रजा बहुत आराम से और सुख से रहती थी। इर्द गिर्द के जो दूसरे राजा थे वो भी इस राजा से डरते थे और ये सबका बड़ा सरदार राजा था। इसको ऐसा हुआ कि मैं देखूं कि मेरी प्रजा इतनी सुखी है मेरे राज में, तो मैं देखूं मुझको कौन प्यार करता है। उसने हुक्म दिया कि शहर के बाहर नवे बगीचे बनाओ, पार्क बनाओ, दरख्त लगाओ, छोटी छोटी नहरें निकालो, छोटे छोटे अंदर स्विमिंग पूल बनाओ, फल फूल बनाओ, और एक आध बरस लग गया, ये एक बगीचा तैयार हुआ, झाड़ बाड़ खूब बनाए। फिर इसने हुक्म दिया, अच्छा अभी तरह तरह के खाने पकाओ। एक रात नसी की और अनाउंस कराया कि कल ये जो बाहर बगीचे हैं इसके दरवाजे खोले जाएंगे, अंदर खाने पीने की ऐश आराम की सब चीजें हैं, मुफ्त है, कोई कीमत नहीं, जो कुछ खाना हो वे खाओ, लेकिन मैं इस बाग के बगीचे के अंदर कहीं छुप जाऊंगा, जो आदमी मुझे ढूंढ लेगा ये सारा बाग बगीचा इसके सामान के साथ मैं उसको फ्री दे दूंगा। अनाउंसमेंट हुई, आजू बाजू के गांव के लोग भी आए, उसकी सारी सल्तनत में से लोग आए। शाम को जब दरवाजे खुले तो लोग अंदर गए, कहीं डांस हो रहा है, कहीं म्यूजिक बज रहा है, जब ये गाना गा रहे हैं, हलवाई जो है वो मिठाई पका रहे हैं, दूसरी तरफ नान भाई तरह तरह की बिरयानी पका रहे हैं, हलवा पका रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, और ऐसे तरह तरह के खाने पकवान कि जो आदमी सेतू थे उनकी नाक में जब खाने की खुशबू गई हो तो उधर ही बैठ गए। अरे राजा को तो ढूंढ लेंगे, पहले खा तो ले, किसी को म्यूजिक का शौक था तो वो उधर बैठ गया। हर आदमी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इन तमाम चीजों में फंस गया। उन्होंने ये सोचा कि राजा को ढूंढना है तो सारी राहत पड़ी है, क्या हुआ, बस इधर उधर चले गए। एक आदमी था, उसने सोचा कि मैं जो इधर बैठ जाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कि मेरे इस टाइम वेस्ट के अंदर मुझे राजा न मिले, लेकिन मैं जो कभी राजा को ढूंढ लूं तो ये सब चीजें मेरी हो जाएगी। मौलाना अली ने फरमाया कि इस आदमी को कोई चीज ने लुभाया नहीं, यार बस पैसे जुड़े हालात थोड़ा कुछ खा लो, कहते तुम खाओ। ये लोगों को देखता रहा कि राजा ने कोई रूप बदला होगा, किसी जगह इसको राजा की शक्ल नजर न आई, ये अंधेरी साइड में चला गया कि जहां कोई आदमी नहीं था, घूमता रहा, झाड़ियां थी, दरख्त थे, घूमते 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 पलोड़ियों के वक्त इसको एक जगह ऐसा लगा कि कुछ आदमी बैठा है। आस्ते आस्ते नजदीक गया तो इसने देखा ये तो राजा बैठा है, सलाम किया। राजा ने पूछा कि ये इतना बहुत खाना पकवान तुझे कोई पसंद नहीं आया? कहता महाराज पसंद तो बहुत आया, लेकिन अगर मैं इसमें पड़ा रहता तो आप मुझे न मिलते, अब ये सब मेरा हो गया ना। राजा कहता बराबर। उसने वो जो गोंग था गोंग बजाया, फौरन पहरेदार और सिपाही आ गए, सब लोगों को बाहर निकाला और ये सारा बगीचा इस आदमी को सौंप दिया। मौलाना ऋषा कहते हैं, हे जवान, इमाम है वो इस दुनिया के अंदर इंसान बन के छुप गया है, जाहिर में आदमी लगता है, हमको ऐसा लगता है ये कि इंसान है, मगर वो राजा है, भेरूप बदल के आया। और उसने कहा है कि जो मुझे पहचान लेगा तो ये सारी दुनिया की माल और दौलत सब कुछ उसकी हो जाएगी। लेकिन लोग दुनिया में आते हैं खाने पीने ऐश आराम, बीवी बच्चे, ये दुनिया की जिंदगी में फंस जाते हैं, उस राजा बादशाह को भूल जाते हैं। मौत के वक्त जब उनको याद आता है तो क्यों लेट हो गया, ये सारी दुनिया उसकी है कि जिसने मौला को ढूंढ लिया। दुनिया के लोग लालच माया में फंस के हम मौला की शनाखत भूल जाते हैं। लेकिन हमारा इतना ही मकसद हमको जो सिखाता है और खास करके जो सुबह की इबादत है वो हमारे मजहब की सबसे अच्छी उत्तम आला चीज है। दिन के वक्त हम अच्छे काम करते हैं, नेक अमाल करते हैं। सच्चा इस्माइली मोमन गुनाह और बदियों में नहीं फंसता और भूले चुके कभी फंस जाता है तो जल्दी से निकल आता है, अपने आप को बचा लेता है। मगर जो दुनियादार है तो वो दुनिया में फंसे रहते हैं, बीवी बच्चे हैं, ऐसा आराम है, बहुत सी जगहों के ऊपर मैं जाता हूँ, ऐसी बहुत सी जगह है कि जमा खाना बीतने है, इर्द गिर्द आदमी रहते हैं, अपने घरों में बैठे हैं, वीडियो देखते हैं, डांस देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जमा खाने नहीं आते। अब ऐसे लोग हैं इस्माइली, लेकिन जमा खाने के टाइम पे ऐसे इशरत में दुनिया में पड़े हैं, सुबह की इबादत कहाँ हो रहे, वो कभी सांस पर नहीं आते, वो सुबह कब आएंगे। और ऐसे वो लोग हैं कि जिनको अपने मजहब की सीरियसनेस का पता नहीं, उन लोगों को कभी कभी कोई लाज लग गई दिल में तो खुशनसीबी है, जमात खाने में आते हैं। जमात खाना वो जगह है मोमिनों जहाँ हजर इमाम खुद रहते हैं, जमात खाने में आके हम हजर इमाम का दीदार पाते हैं, दीदार का लाभ सवाब मिलता है हमको। मौलाना हजर इमाम अफ्रीका के गांव में गए, मुझे ने कहा खुदावन मैं एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ। मौलाना अजी हुए बोल तो मौला जमात की हाजिरी बहुत अच्छी है, सब बहुत खुश हुआ। मौला आके माइक पे खड़े हुए, मौला फरमाया मेरे मुखी ने कहा है कि जमात खाने की हाजिरी जमात की बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हुआ। मौला फरमाया मुझे इतनी खुशी हुई है जब तुम जमात खाने आते हो तो मुझे इतनी खुशी होती है कि दुनिया की कोई चीज इतनी खुशी मुझे नहीं दे सकती, लेकिन जब तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख लगता है कि इससे ज्यादा दुख किसी और चीज में मुझे नहीं लगता। इमाम का यह फरमान बहुत दफा जमात में पढ़ा भी दिया होगा। मेरी अर्ज यह है कि हम अगर हजरत इमाम के मुरीद हैं, हम अगर मानते हैं कि हजरत इमाम हमारा इमाम है तो हम मौला को दुख दे रहे तो मौला को सुख दे रहे, क्या देना चाहिए। अगर जमात खाने नहीं आते तो मौला कहते हैं इससे ज्यादा दुख मुझे कोई नहीं लगता, और जमात खाने आते हो तो इससे ज्यादा मुझे कोई चीज सुख नहीं देती, खुशी नहीं देती। अब हमारे ऊपर है कि हम हजर इमाम को दुख देने से सुख दे रहे। जो लोग जमात खाने नहीं आते वो मौला को दुखी करते हैं। अब मैं पूछता हूं कि जो मौला को दुख करते हैं तो मौला ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप मौला को दुख देते हो, मौला ने आपका कुछ खराब काम किया, तो फिर जमात खाने ना आके मौला को दुख देने का कारण क्या। कारण दुनियादारी, मोह ममता, मौला को दुख देना हमारा काम नहीं। हमारा मजहब, हमारा ईमान, हमारी बैयत तो यह है कि मौला के हुक्म पे चल के उससे हम राजी करें। तन मन धन हमने मौला को दिया है, हमने मौला की बैयत की है, उसके हुक्म मानने की कसम खाई है। फिर अगर हम हजरत इमाम का हुक्म नहीं मानते तो मौला का दुख बिगड़ता नहीं, मौला का दुख जरूर लगता है। मौला ने हमें अपना बच्चा बनाया है। मौला कहते हैं कि दुनिया का कोई भी माता पिता इतना प्यार अपनी औलाद को नहीं कर सकता जितना मैं तुमको प्यार करता हूं। ऐसा प्यार करने वाला हमारा मौला कि जो दिन दुनिया के अंदर सगे माँ बाप से ज्यादा हमको चाहे, हम उसको दुखी करें, हम उसकी नाफरमानी करें, तो फिर धर्म रखने की जरूरत क्या है। ये इमाम दुनिया के अंदर भी हमारे लिए कैसे कैसे काम करता है। एक दिन ये 64 की बात करता हूं, दिसंबर का महीना, मौलाना हाजर इमाम कराची में थे। अफ्रीका में केन्या के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, एशियन के विरुद्ध में अपनी जमात बहुत डर गई। मौलाना हाजर इमाम को करीबी ने टेलीग्राम किया, कलेक्ट भेजा। मौलाना हाजर इमाम ने कराची का 2 दिन का प्रोग्राम कैंसिल करके साउथ अफ्रीका आए। जमात में आके मौलाना हाजर इमाम ने सबको देखा, सबके चेहरे उतरे हुए थे। मौलाना हाजर इमाम जब माइक के ऊपर आए, एक हाथ से मौला ने माइक ऐसा पकड़ा था, दूसरे हाथ से मुखियानी ने जो चेन पहनाया था वो उंगली से चेन से खेलते रहे। मौला कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चों, तुम कोई फिक्र मत करो। हाथ निकाल के माइक में से सब कहते हैं, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, आई विल वरी फॉर यू। मैं बैठा हूं, जमात को सुझारा मिल गया, जमात खुश हो गई, चेहरे का रंग बदल गया। 2-3 दफा मौला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं, कुछ भी होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 12 घंटे के अंदर तुमको इधर से निकाल लूंगा। और मौला ने एक कर दिखाया, 64 में नहीं, इधर केन्या में नहीं हुआ, लेकिन युगांडा के अंदर 72 में हो गया। जब ईदी अमीन ने 90 दिन की नोटिस लगाई कि तमाम एशियन इधर से चले जाओ, 3 कपड़े में, हाथ में घड़ी होती थी, घड़ियाल से वे सोल्जर निकाल लेते थे, औरतों के दागीने निकाल लेते थे, कानों की बालियां भी निकाल लेते थे, और अगर किसी मर्द के बहुत अच्छे बूट दिखते थे तो उसके बूट निकाल लेते थे। इस तरह 3 कपड़ों के अंदर एशियन लोग भागे हैं और उसमें 12,000 से 13,000 हम अपने इस्माइली हैं। अभी बहुत से चले गए। मौला ने तंग सदरुद्दीन को भेज के यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट बनवाए अपने इस्माइलियों के लिए। मौला ने इंतजाम किया कि नैरोबी से कंपाला तक 2-2 एरोप्लेन की फ्लाइट जाने, 2 जाने 2 आने, और सर इबू हमेशा हर फ्लाइट में साथ होते थे। अपने इस्माइलियों को निकाल लिया, सामने प्लेन में से उठा लिया, जो खुद चले गए, बाकियों को प्लेन में ले आए। हेली फ्लाइट जब गई तो उसके अंदर इतने इस्माइली नहीं थे, 30-35 जगह खाली रह गई। छोड़ दिया। मौलाना इमाम ने जब ये कहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको 12 घंटे में घर से निकालूंगा। और ऐसा ही हुआ, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फ्लाइट नैरोबी और कंपाला, 1 घंटे का रन है। 2-2 ट्रेन की फ्लाइट जावे, इस्माइलियों को ले आए, फिर जावे ले आवे, सब इस्माइली आ गए। 30-35 जगह रह गई तो हम गैरों को भी लेके आए। ऐसा हमारा मौला है। अभी मेरे लिस्ट के अंदर ये जो धमाका हो रहा है, तो मौलाना हजरत इमाम ने फिर अपने एरोप्लेन भेजे। हजरत इमाम की खुद की एयरलाइन है अली शारदा एयरलाइन, जो सार्डिनिया और रोम के अंदर चलती है। मौला अपने प्लेन भेजे, कुवैत के अंदर से अपने इस्माइलियों को उठाया, तुर्की में ले गए, और वहां से कोई पाकिस्तान चलाया, कोई कनाडा चला गया, कोई लंदन चला गया। हजरत इमाम ने अपने बच्चों को उठा लिया। कौन है दुनिया में ऐसा धर्म गुरु कि जो अपने शिष्यों को मुरीदों को अपने चेलों को फॉलोअर्स को इस तरह से मदद करे वो सदा बात भी नहीं करता, लेकिन हमारा ईमान हमको प्यार करता है। मौलाना हजर ईमान हमको प्यार करता है, हमने इसके साथ बैठ की है और प्रॉमिस किया कि या मौला मेरा तन मन धन तेरे कदमों में रखता हूँ, तेरा हुक्म मानूंगा। तो सामने मौला हमको प्रॉमिस करता है, एग्रीमेंट में दो साइन होनी चाहिए ना, हमने तो साइन की कि या मौला मैं तेरा फरमान मानूंगा। अब मौला ने भी साइन की जिसको हम अपनी जबान के अंदर कहते हैं कांगड़े भरना, बैत को कहते हैं कांगड़े भरना सॉरी, और हजर इमाम की जो प्रॉमिस होता है उसको हम कहते हैं कांकन बांधना। कांकन बांधना कांकन हजर इमाम का प्रॉमिस है कि तुम अगर मेरी फरमान बर्दारी करोगे तो मैं भी प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, कयामत तक छोड़ूंगा नहीं, दिनों दुनिया के अंदर मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। और अगर सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि रात को जब तुम कलम में पढ़ो और अपना सिर तकिए पे रखो तो मुझे याद करते करते तुम सो जाओ। बोला कहते हैं मैं सारी रात तुम्हारे पलंग की चौकी करूंगा, पहरा दूंगा कि तुमको कोई आफत भला ना आए। तुम अगर रात को मुझे याद करके सो जाओगे तो मौला कहते हैं मैं सारी रात तुम्हारे पलंग से नजदीक तुम्हारी चौकी करूंगा कि तुम्हारे ऊपर कोई आफत भला ना आवे। हमारा मौला हमारा ईमान ऐसा है, और हमारी सारी रात की नींद पांच सात घंटे की इबादत में लिखी जाएगी जो रात को याद करके मौला को सोएंगे। तो मौला कहते हैं मैं तुम्हारी नींद के जितने तलाश होंगे मैं इबादत में लिखूंगा। ऐसी बख्शिशें ऐसी सही हालतें ऐसी बरकतें रहमतें कौन से मजहब में है, लोग तो ढूंढते हैं ऐसा। हमारे लिए तो ये जमातों में नियामत मौला की, बड़े बड़े शहरों के अंदर पर कौन से लोग कभी कभी अपने इस्माइलियों को कहते हैं कि तुम लोग बड़े खुश नसीब हो, शाम को बन ठन के कपड़े पहन के तैयार होकर तुम जमातों में जाते हो, हमको देखो काम होती है हमको ऐसा मुझारा होता है कि किधर जाए, क्लब में जाए तो खर्चा होता है, सिनेमा में जाए तो खर्चा होता है, हम तो बैठ के एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हैं, शाम को वक्त निकालने के लिए बदले बुलाने के रास्ते हैं, शराब खाने हैं रंगी खाने हैं और बदमाशियों की जगह है कि जहाँ शाम के वक्त जाए, लेकिन हम इस्लामी नहाधो के तैयार होकर हम जमात खाने आते हैं, मौला को सलाम करते हैं, भाई बहनों को मिलते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह निकालते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, भलाई की और बरकत की दुआएं मांगते हैं, और फिर एक घंटे के बाद हम अपने घर जाते हैं, राजी खुशी जाते हैं। सारे दिन की कामकाज की मारामारी में जो मेंटल टेंशन होती है, जो नर्वस ब्रेकडाउन होने के करीब होती है, जब आप समय आते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा माइंड हल्का हो जाता है, टेंशन निकल जाती है, इरिटेशन निकल जाती है, दुख निकल जाता है, मन के अंदर सुख पैदा होता है, मौला के ऊपर आसरा बढ़ता है, दिल में होता नहीं मेरा मौला बैठा है और मौला सचमुच बैठा है, अपने बच्चे की मदद करता है। अगर इमाम कंपाला गए एक दफा और वहां अपने इस्माइली की होटल की इंटीरियर होटल में स्पेशल रूम बनाया जाता तीन आई थी तो वहां ठहरी थी, मौलाना हजर इमाम वहां ठहरे। एक दिन सुबह मौला कॉफी पीते थे, पेपर पढ़ते थे, एक 18-20 बरस का इस्माइली लड़का वो सारी रात वॉच करता रहा कि मौला को कब मैं अकेला पाऊं तो मौला के पास जाऊं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो मौला की नजर पड़ी, सलाम किया, सब कहते हैं के बैठा हाथ जोड़ के मौला पूछा तेरे को इस वक्त आने की क्या जरूरत पड़ी। वो पड़ा कहते खुदा ने मैं बड़ी आफत में आ गया हूं, साहब ने सफारत किया पूछा क्या बात है शुक्रिया मौला, हम शोक से खेलते खेलते एक ऑपरेशन के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मेरे हाथ में जो अंगूठी है वो उसकी आंख में लगी, उसकी आंख फूट गई है। ऑपरेशन का राज है और ऑपरेशन के दिल में ईश्वर की तरफ प्रेम नहीं नफरत है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में मौलाना हजर इमाम कहते थे तुमने बहुत बुरा किया, जैसे ये अफ्रीकनों का मुल्क है, तुमने उसमें आंख खोल डाली, ये तो बहुत बड़ा गुना है, तेरे को जरूर जेल की सजा मिलेगी। मैंने तो पांव से रख दिया, खुद रहा मौला की एक जीत में है। जब हम इसके पास रो पड़ते हैं ना तो मौला ढीला ढीला हो जाता है, रहमत उसकी उभर आती है। मौला ने उसको हाथ लगाया, अच्छा अच्छा उठो देखो, फिक्र मत करो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ, खुदा होकर बैठा। मौला ने कहा सारी मुझे स्टोरी सुनाई, उसका केस था, उसके सारी स्टोरी उसकी तरह से सुनाई। मौला सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर मौला ने उसको कहा कि देख तेरा वकील जो है ना उसको जाके तू ऐसा बोलना कि लड़ाई जरूर हुई लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, हम इंटेंशन लगी, मेरा हाथ उसकी आंख पे लग गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा खुदा मैंने ये बात कही है मगर वकील कहता कि नहीं तेरे को तो जेल हो जाएगी। देखो अब मैं तुमको कहता हूं ऐसा कहो, तुमने कहा भले कहा, अब मैं तुमको कहता हूं कि तुम ऐसा कहो, मतलब कि मैं अपनी नूरानी ताकत तुमको दे रहा हूं। भले खुदा वकील के पास गया, वकील को कहा कि देख कल मेरी डेट है, हियरिंग डेट है, तुम जज को ये तो बोलो कि मैंने अनइंटेंशनली ऐसा किया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा इरादा नहीं था, ऐसा हो गया। लेकिन कहता है ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, हर आदमी ऐसा ही कहता है कि मेरा इसके अंदर इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा ठीक है लेकिन तेरे को ये पॉइंट कहने में लाना क्या, ऐसा चीज क्या है? उसने बोला अच्छा मैं कहूंगा। जब केस आया तो वकील ने यह बात कही कि मेरा जो क्लाइंट है वो कहता है कि हमारी लड़ाई हुई लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसकी आंख खोल डालू। वकील सोच वकील ने कहा जज सोच में पड़ गया, हालांकि ये नॉर्मल चीज है, जज सोच में पड़ गया, जज के विचार बदल गए और उसको सौ के देश से उसने निशान किया और कर दिया। भक्त के मौला के पास आया वापस, कहते मौला मैं शुक्रगुजारी करता हूँ मुझको जेल से निकाल दिया, नॉमिनल फाइन दिया, बाबा फरमाया मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे बचाया है, कहा तुम्हारे आपने बचाया, देख तुम एक इस्माइली हो, मेरे रूहानी बच्चे हो, दुनिया में इस तरह से चलो कि कोई गुनाह ना होने, कोई प्रॉब्लम ना होने, मेरे बच्चों को दाग ना लगे और सब लोग मेरे रूहानी बच्चों की इज्जत करें, अच्छे बने, कोई संकटी नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करके चला गया। इमाम सुल्तान जी का भी फरमान है कि तुम इस तरह दुनिया में रहो कि पर कम के लोग कहें कि आगा खान के मेरी फरिश्ते जैसे हैं। हमारा मजहब जो है ये नदियों का मजहब है, ये पांच दिन है, इस दिन के अंदर हमको रूहानी अजमत लेनी है, रूहानी के अंदर हमको ऊपर बढ़ना है, सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत हमारे लिए जरूरी है। जैसे बिंदारो इस्माइली किसको कहते हैं, कौन सच्चा इस्माइली है? सच्चा इस्माइली वो है जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी का माल नहीं खाता, जो खराब नजर से बद नजर से किसी को नहीं देखता, जिसके दिल के अंदर कीना नहीं हसद नहीं, जिसके दिल के अंदर बिल्कुल पाकाई और सफाई है, वो आदमी बिल्कुल नीतिवान है, ऑनेस्ट है, सुबह शाम जमात करने आता है, इबादत करता है, अपने हाथ की कमाई में से दशलम लेता है, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखता है, सगे कुटुंबियों के साथ अपना सलूक अच्छा रखता है, जमात के साथ भी अच्छा सलूक रखता है, ऐसा आदमी सच्चा इस्माइली है। नाम का इस्माइली लेबल लगा देने से कुछ नहीं होता, हमारी हालत सुधरनी चाहिए, हमारे विचार सुधरने चाहिए, حضرت امام کی بڑی دیا اور رحمت ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسماعیلیوں کا نام حضرت امام کے نام سے لگا ہے. اعلیٰ خان کے مجھے کینیڈا کے اندر ہماری جماعت کو 20 برس ہوئے ہیں. آج ہمارے پاس کینیڈا میں 39,000 آدمی ہے. 20 برس 71-72 سے شروع ہوا ہے. 20 برس کے اندر اسماعیلی ایسے جم گئے ہیں کہ جیسے 100 برس سے رہتے ہوئے. حالانکہ ادھر جرمن ہیں, اٹالینز ہیں, گریس ہیں, فرینچ ہیں, ایسے لوگ 50-50-60-60 سال سے ادھر ہیں, لیکن ہمارے سامنے ان کی سرخانی کریں تو وہ ہم سے نیچے ہیں, اکنامیکلی بھی نیچے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف بھی ہمارے سے نیچے ہے. 20 برس کے اندر اسماعیلی اس طرح سے رہتے ہیں کہ آج ادھر ہر آدمی اسماعیلیوں کو جانتا ہے. روز اسی آفس کے اندر کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اور اس آفس میں کوئی اسماعیلی ہو رہے تو مینیجر کہتا ہے تم اپنی قوم والے کو لے آؤ. وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اسماعیلی ان کی آفس میں کام کرے. اسماعیلی موسٹ صرف نیچی والے آنےسٹ ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اسماعیلی آغا خان کے لیڈ ہیں تو یہ بے ایمانی نہیں کریں گے, ڈس آنےسٹی نہیں کریں گے. ہے ہمارے اندر جو چار چکا کھانا بازی آ گیا ہے, لیکن نارملی جنرلی سارے کینیڈا میں گورنمنٹ میں اور پبلک کے اندر بھی اپنی بڑی عزت ہے. یہ عزت ہم نے کمائی حضرت امام کے نام سے عزت ہے, آغاخان سے مجھے ہے. اور امام ان کی بھی گورنمنٹ کی بھی مدد کرتا رہتا ہے. روزانہ ہم اسماعیلی ہوتے بہت خوش نصیب ہوئے مولانا حضرت امام کی سنگت سے, مولانا حضرت امام کی فرمان برداری سے, مولانا حضرت امام کی دوستی سے, جیسا چندن کے پاس رہنے سے نیمبڑے میں بھی خوشبو آ گئی, اس طرح ہمارے اندر بھی خوشبو آنی چاہیے. یعنی حضرت امام کی اچھی عادتیں ہمارے اندر آنی چاہیے. تو اچھا ہے, بالکل اچھا ہے. ہمارے امام میں کوئی عیب نہیں, کوئی خرابی نہیں. وہ معصوم ہے, پاک ہے, انوسنٹ ہے, انفیلیبل ہے. ہمارے اندر وہ کوالٹیز آنی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ہم اور بھی نام پیچھا کریں. جہاں بھی اسماعیلی جا کے کھڑا ہو گئے ہم اس کو کہیں کہ اسماعیلی ہیں تو اس کے دل میں ہماری عزت پیدا ہو جائے. میں ایک دفعہ لیس بن گیا. میرے پاس اس وقت تنزانیہ کا پاسپورٹ تھا اور ہمارا جو تنزانیہ تھا وہ سویل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی. میں اگر اپنے گاؤں میں سے ویزا مانگوں تو سویل جانے کے لیے تو ویزا نہ ملے, اور اگر میں لندن جا کے پورچوگل کی امبیسی میں جا کے کہیں کہ مجھ سے لندن جانا ہے تو مجھ سے ویزا نہیں دے رہے. لیکن مجھے جانا تھا, اپنے جماعتی کام کاج کے لیے مجھے جانا ہی پڑا. تو ایک ہی رکھتا تھا کہ میں ایک دفعہ چلے جاؤں. میں چلا گیا لندن سے. جس دن ایئرپورٹ سے اترا لائن میں کھڑے رہے, امیگریشن کے پاس گیا, میرا پاسپورٹ دے کے اس سائڈ میں رکھ دیا. تو نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ. مجھے پتا تھا میں بیٹھ گیا. سب لوگ چلے گئے تو یہ میرے پاس آیا. مجھے کہتا ہے کہ تم تنزانیہ پاسپورٹ لے کے آئے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ ہم تنزانیہ کو رضا نہیں دیتے. نے کہا مجھے ادھر ایک بہت دھارمک کام ہے. کہتے ہیں کام بم ہم نہیں سمجھتے, اس سے پولیٹیکل میٹر. میں پاسپورٹ لے جاتا ہوں, 6 گھنٹے کے بعد ادھر نئی فلائٹ آئے گی, گو بیک ٹو لندن. میں بیٹھ گیا. 3 گھنٹے کے بعد آیا, مجھے ایک فروٹ دی کہ یہ ریسٹورینٹ ہے, کھانا پینا چائے وغیرہ کچھ بھی ہے یو کین ہیو اٹ. میں بیٹھا رہا. 15-20 منٹ کے بعد مجھ کو خیال ہوا, میں واپس اس کے پاس گیا. میں نے کہا دیکھو ادھر یہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کا سب سے بڑا آفیسر جو ہے پتا نہیں دوسرا آدمی ہے. میں بولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہتا ابھی آیا نہیں ہے. اچھا میں بتا رہا ہوں. کچھ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک آفیسر آیا ہے. یہ آفیسر تو چلا گیا پاسپورٹ رکھ لے گیا. وہ جب یہ اندر جاتا تھا تو میں بھاگا اس کے پاس, اس کو میں نے ریچ کیا. کاؤنٹر کے پیچھے جا کے مجھے بولتا کیا بات ہے. میں نے کہا اگر سب سے بڑا آفیسر کون ہے. کہتا میں ہوں. میں نے کہا تجھے ملنا چاہتا ہوں, اندر آؤ. تو دن میں لے گیا. میں نے کہا دیکھ یہ میرا پاسپورٹ ادھر پڑا ہے. بولا برابر ہے. تم 6 گھنٹے کی بات واپس لاتے ہو. بولا میری بات سن, मैं आगा खान का मिशनरी हूँ, बस गोली मुझे ना गोली ऐसा हुआ, वो खड़ा हो गया। आगा खान के मिशनरी? मैंने कहा हाँ। इसका कोई सबूत है? मैंने अपना ब्रिफ केस खोल के एक लेटर दिखाया, मौला की सिग्नेचर देके आंखों को लगाया, मुझे सजूत किया। कहता मैंने क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं बोला मुझे शहर में जाना है, दो दिन रहना है। मुझे कहता ऐसा हो नहीं सकता कल जमिया पासपोर्ट है, लेकिन मैं पासपोर्ट को रखू। मैंने कहा रख ले। कहता मैं स्वयं नहीं मारूंगा। मैं बोला मुझे तो जरूरत नहीं। उसने पासपोर्ट रख लिया, मुझे स्लिप दी, पासपोर्ट का नंबर वगैरह लिख के मुझे बोला जब इधर आना हम तुमको पासपोर्ट दे देंगे। दो दिन ठहरने, दो दिन तीन दिन एजमत ऐसी लाइट, मैंने लगे दो दिन ठहरूंगा। हम बन समाज के लोग मुझे लेने आए थे, वो तो इंतजार करते 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 चले गए। मैंने इसको कहा मैं बोला देश तुम्हारे बदकली की चिंता उनसे मेरे आदमी चले गए। कहता मैं तुमको काम में ले जाता, कहाँ जाना है? मैंने एड्रेस दिया, अपना टाइम वेस्ट करके गाड़ी निकाली और मुझसे छोड़ के आया। किस नाम से? आगा खान के नाम से। ऐसा हमारा मौला है कि जिसके नाम से सारा नाम न प्रताप करी महासागर समुन्द्र गरिमान। ऐ मौला तेरे नाम से महासागर समुन्द्र मुझे रास्ता दे दे, ऐसा मौला हमारा। और हम इस मौला के नाम से फायदा नहीं उठा रहे। दुनिया की मोह ममता माया मौत शोक गुना उत्सव ये हमारे काम नहीं है। खाओ पियो, खुशी रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन बड़ाई ना करो। अच्छी गाड़ी में अच्छे मकान में रहो, लेकिन मजबूत न बनो, सही खर्च न बनो। जिस चीज के बगैर चल सकता है अगर मन में अभी थोड़ी सी जर्मनी भी थोड़ी ही बाइक बनती है। ये दो भाई बरस अभी सेशन के हैं, खराब है चाहे खराब है, लड़ाई हो गई या न हो गई अगर इसमें, लेकिन दो भाई बरस बिजनेस खराब हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर फरमाते हैं तो समझ के खर्च करो, नवे कपड़े न बनाओ। जिस चीज के बाहर चल सकता है उसको रखो, यानी कि वह चीज मत खरीदो जिसके बगैर चल सकता है। पैसा बचाने की कोशिश करो, प्रॉपर्टी में पैसा मत डालो। कर कसर करो, पैसा बचाओ, सिंपल सादा खुराक खाओ, सिंपल सादे कपड़े पहनो। मेरा नाजिर न फरमाया दो ढाई बरस सवा तीन बरस सारी दुनिया के ऊपर ऑपरेशन है। मैंने भी आपको कनाडा की बात की, कनाडा में गए 10 महीने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक लगभग 47,000 बैंकरप्टसी फाइल हुई है। अमेरिका की हालत कनाडा से ज्यादा खराब है। यूरोप के अंदर जो यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी है कॉमनवेल्थ है ये भी खराब है। जापान की हालत और भी खराब है। जो ज्यादा मालदार है उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका के देश भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है और वेस्टर्न कंट्रीज से डिपेंडेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर कुछ होता है तो इसका असर सारी दुनिया के ऊपर होता है और भी महंगा हो जाएगा और इसके कारण से दुनिया की और भी चीजें महंगी होंगी, बाई चीजें महंगी भी होंगी। तो ये आने वाले 2 से 3 बरस जो है उनमें होशियारी से रहो, खर्च कम करो, वर्कशॉप की तरफ न देखो, पार्टियां और आराम की चीजें न लो। हो गया हो गया, लेकिन अपने बाल बच्चों को भी कहो कि यह गरिमन की हिदायत है कि आप कैसे करते रहो। वाला रहा गरीबाद हमारी कैसे फिक्र करता है, दुनिया भले भी फिक्र करता है, दुनिया भले भी फिक्र करता है। ऐसा पाप भूमि हमें मिला है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी महिला का और इस महिला की बंदगी विवादित करके इसकी सम्मान में जारी करके अगर हम रहे तो दिन दुनिया में हमारी हालतें और भी अच्छी हो जाएंगी और इच्छा और भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपकी मुलाकात से बहुत खुश हुआ। आज 7 दिन से ज्यादा हुए मैं रोज दो दो तीन तीन बातें करता हूँ, मुसाफिरी करता हूँ। मेरी उम्र अब 25-40 वर्ष पहले जैसी नहीं रही। 72 वर्ष का आदमी आपके सामने खड़ा है और आपको माफी मांगता हूँ कि और इससे ज्यादा अच्छी तरह से लंबी आवाज न कर सका, मेरा गला नहीं निकल गया है। लेकिन आपकी मुलाकात से मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पता भी नहीं लगा कि कहाँ यह सारा घंटा निकल गया है। दिन भर आपको दिन दुनिया में मेरा आभार करे, आपकी कैसी करे, उम्मीदें पूरी करे, किसी कति समझ देवे, वो जहान में बरकते देवे, आपको खुशियां देवे, आपको बख्शिशें देवे, आप पर रहमतें उतारे, मेरा हर किस्म की तकलीफ मुसीबत मुश्किल बीमारी बता करे, बच्चों की ग्रीफ में पूरा रखे, मेरा आपके दिल से दुश्मन बता करे, मेरा परमान बलदाया मेहमान बनाए, कुटुम कबीलों में जमातों में सलासन मोहब्बत देवे, मेरा आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आपकी दुआ बंदगी कबूल करे, मेरा आपके ऊपर आपके अलौलाद के ऊपर हमेशा राजी रहे, अच्छाई और भलाई से काम करने की तौफीक दे, मेरा जहर बातों की बार नसीब करे। एक साथ देता हूँ आप सब आराम से इस पाठ को मेरा के दिन के तौर पर बोले,